8 मार्च दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदर। ईपीएफ निकालने पर लगाया गया टैक्स वापस।
द गवर्नमेंट वुड लाइक टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ दिस प्रपोजल एंड देयरफॉर आई विथड्रॉ द प्रपोजल इन पैराग्राफ 138 एंड 139 ऑफ माय बजट स्पीच।
आपकी मुलाकात कराएंगे आदिवासियों के नेता सोनी सोरी से और बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी नेहा तंवर से, जिन्होंने माँ बनने के लिए अपने करियर को कुर्बान कर दिया।
मुझे 3 साल हो गए थे शादी के लिए और मुझ पे थोड़ा बेबी प्लान करने के लिए थोड़ा प्रेशर था, इसलिए मैंने छोड़ा था। सोचा था कि मैं बेबी प्लान करूंगी तो मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करूंगी, और मैं ऑलरेडी 3 साल शादी के बाद मैं 3 साल खेल चुकी थी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ निकालने पर कर लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने यह प्रस्ताव बजट पेश करते वक्त रखा था। जेटली ने कहा कि वो इस नीति की समीक्षा करेंगे। सरकार ने बजट के दौरान ईपीएफ से पैसा निकालते समय उसके 60% हिस्से पर कर लगाने की घोषणा की थी, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। हालांकि बाद में सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि पीपीएफ निकालने पर किसी तरह का कर नहीं देना होगा। भारतीय वायुसेना इस साल जून में पहली बार महिला लड़ाकू पायलटों को लड़ाकू भूमिका में शामिल करेगा। वायुसेना प्रमुख अरूप साहा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 महिला पायलटों की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें 18 जून को शामिल किया जाएगा। राहा ने कहा कि महिला पायलटों को वायुसेना में 1991 में शामिल किया गया था, लेकिन अब तक वो केवल हेलीकॉप्टर और वाहक विमान ही उड़ा रही थीं। चीन ने कहा है कि वो वैश्विक मुद्दों पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन साथ ही उसने ये भी साफ किया कि ऐसा करते हुए वो विश्व में अमेरिका की जगह नहीं लेना चाहता। देश के वार्षिक संसदीय सत्र के दौरान भाषण देते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चीन विश्व नेता बनने का सपना नहीं देखता। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम अमेरिका नहीं हैं और चीन दूसरा अमेरिका बन भी नहीं सकता। हमारा कोई इरादा भी नहीं है किसी को कहीं से हटाने का या किसी का मार्गदर्शक बनने का। और मैं अपने अमेरिकी दोस्तों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वो चीन की 5,000 साल पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को समझें और हमें समझने के लिए अपनी अमरीकी सोच का इस्तेमाल ना करें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के शब्द। डेनमार्क में एक 16 साल की लड़की पर 2 स्कूलों में बम लगाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें से एक स्कूल यहूदी समुदाय का था। पुलिस के अनुसार उन्होंने लड़की के 24 वर्षीय पुरुष मित्र पर उसकी मदद करने और बम तैयार करने के आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के अनुसार दोनों को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने बम के लिए रसायन हासिल कर लिए थे और विस्फोटक बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार लड़की ने हाल ही में अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म कबूल किया है और उसका पुरुष मित्र सीरिया में लड़ चुका है। टेनिस की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने कहा है कि वो एक ड्रग टेस्ट में असफल रही थी। शारापोवा ने कहा कि वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। महज 17 साल की उम्र में विंबलडन जीतने वाली रूसी खिलाड़ी के टेस्ट में मेल्डोनियम पाया गया। ये टेस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित था। शारापोवा साल 2006 से स्वास्थ्य कारणों से इसका सेवन कर रही थी। 5 ग्रैंड स्लैम चैंपियन का खिताब जीत चुकी शारापोवा को अस्थायी तौर पर आगे की कार्रवाई के लिए 12 मार्च से निलंबित कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार कर ये रेहान फदल का। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। आज इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा कर्मचारी संगठनों के प्रतिवेदन के बाद किया गया है। पिछली 29 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि की कुल राशि का 60% निकालने पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका श्रमिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने जमकर विरोध किया था। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रवि।
नाउ पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री अरुण जेटली जी।
हंगामे के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट के भाषण के संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें ईपीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी।
उसी दिन होना था।
अरुण जेटली जब अपना प्रस्ताव पढ़ने के लिए खड़े हुए तो इस मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी था।
चर्चा करो ना, बजट में भी चर्चा होनी है।
हालांकि इन सब के बीच जेटली ने लोकसभा में कहा,
In view of the representations received, the government would like to do a comprehensive review of this proposal, and therefore I withdraw the proposal in paragraph 138 and 139 of my budget speech. The proposal of 40% exemption given to NPS subscribers at the time of withdrawal remains.
अरुण जेटली कह रहे थे कि श्रमिक संगठनों के प्रस्तावों के मद्देनजर वो ईपीएफ की निकासी पर टैक्स के अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि सरकार की मंशा है कि कर्मचारियों को अपना भविष्य सुरक्षित करने का जरिया मिल पाए, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव रखा था जो कर्मचारियों के हित में है। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद और मजदूर नेता तपन सेन ने बीबीसी से बात करते हुए जेटली के प्रस्ताव वापसी के कदम की सराहना तो की, मगर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भविष्य निधि को ही खत्म करना चाहती है।
तो उसका जो मंशा है जो ईपीएफ को खत्म करेगा, ऑलरेडी सरकार का तरफ से ईपीएफ को एनपीएस का फेवर में ऑप्शनल बनाने का एक प्रस्ताव भी लेबर मिनिस्ट्री के जरिए सारे ट्रेड यूनियनों को पास आया, सारे ट्रेड यूनियन ने उसको पूरा रिजेक्ट किया। तो इसीलिए सरकार चाहता है ईपीएफ से लोगों ने एनपीएस में चला जाए।
दूसरी तरफ कांग्रेस से संबद्ध इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अशोक कहते हैं कि कर्मचारियों की भविष्य निधि के मामले में सरकार को बीच में आना नहीं चाहिए।
ईपीएफ को क्या खत्म करेंगे, इनका कुछ है भी उसमें? 12.5% इम्प्लाई का है, 12.5% 12.5% इम्प्लायर का होता है
जी।
खत्म करेंगे हम, ट्रस्ट बना ले, हम तो चाहते हैं खत्म कर दें, गवर्नमेंट हट जाए। इट शुड बी एक वर्कर्स ट्रस्ट होना चाहिए, कैपिटल ट्रस्ट, जैसे फॉरेन कंट्रीज में बाहर है, जर्मनी में है
जी,
जहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इट शुड बी वर्कर कैपिटल ट्रस्ट गवर्नमेंट के। इसमें अच्छा, इसमें एक पैसा गवर्नमेंट का है नहीं। एडमिशन चार्जेस भी एम्प्लॉयर को 1 पॉइंट पूछा था, अब 0.80 हो गया है, एक नॉट ए सिंगल पेनी।
वहीं वैल्यू रिसर्च से जुड़े धीरेन्द्र कुमार का कहना है कि ये प्रस्ताव कर्मचारियों के हित में ही था, मगर सरकार लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई।
पॉलिटिकली बड़ा डिफिकल्ट काम था और इसका बड़ा विरोध हुआ है, लेकिन सरकार की जो मंशा थी उस पर डाउट नहीं किया जा सकता है। बुढ़ापे में जब बहुत सारे लोगों को अचानक एक साथ बहुत सारा रकम मिलता है तो वो उस पैसे को संभाल नहीं पाते हैं
जी।
और उस पैसे को अगर सरकार टैक्स लगा करके अगर उनको रोकना चाहती है कि वो एक मुश्त पैसा निकाल के खर्च ना करें, तो ये एक अच्छी कदम थी जिसके लिए सरकार पब्लिक ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पाई। ये आपके जिंदगी भर का इकट्ठा किया हुआ पैसा है, मुझे लगता है कि सरकार को इंसेंटिव दे करके कैरेट वाला स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए।
बहरहाल ईपीएफ की निकासी पर टैक्स का प्रस्ताव वापस लिए जाने से श्रमिक संगठनों में खुशी का माहौल है। प्रस्ताव का विरोध कर रहे कुछ एक राजनीतिक दल अब अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश में जुट गए हैं, जाहिर है क्योंकि अगले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
आदिवासियों के नेता सोनी सोरी के चेहरे पर केमिकल से हमले के बाद अब उनके घर पर पर्चे फेंके गए हैं जिसमें उनके बच्चों पर हमले की धमकी दी गई है। इस सब के बावजूद वो वापस छत्तीसगढ़ जाना चाहती हैं। दिल्ली में इलाज के लिए आई सोनी सोरी से बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने विशेष बातचीत की।
जहाँ हमारे आदिवासी बहनें आदिवासी भाइयाँ रहते हैं तो उनके साथ जो अत्याचार होता है, उन जंगल की आवाज़ को हम मैदान में लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस तरह की जो घटना घट रही वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वहीं के वहीं थम जाना चाहिए। तो उसी का ये है कि ये मुझ पर अटैक करके वो इस तरह मुझे दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। डर नहीं है, मैं वापस छत्तीसगढ़ जाके फिर उन मुद्दों को उठाऊंगी।
आप बार बार वापस छत्तीसगढ़ ही जाना चाहती हैं इस हमले के बाद भी, पर हमले में आपने कहा कि इस बार धमकी आपकी बेटी को दी गई है। अपने बच्चों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में और इस डर के माहौल के अंदर रहते हुए आप क्या सोचती हैं?
मुझे भी लग रहा था कि मेरे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, और अब मैं एक माँ होने के नाते अपनी ममता का वास्ता दे के शायद ये कुछ अपनी बात रखी हैं और मुझे इस लड़ाई से, इस चीज़ से शायद मेरे को दूर कर सकते हैं और मुझे मानना पड़ेगा, ऐसा हुआ। पर मेरी बेटी ने जब मुझे फ़ोन करके कहा कि मम्मी आप डरो नहीं, आपके तो मतलब जाने के बाद दिल्ली में आपका इलाज चल रहा था, आपकी स्थिति ठीक नहीं थी, हमने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर से पर्चे आए, पता है उसमें क्या लिखा है, आप बेटी को गार्ड दिलवा के कुछ मत रहो मैडम, आपका तो एक बेटा भी है। पर मम्मी हम नहीं डरे हैं, हमको डर नहीं लगा, आप मत डरो, ये सब डरा रहे हैं, हमको डरने वाले में से नहीं है। तो ये मेरे बच्चों की आवाज़ है, ये मेरे बच्चे कह रहे हैं।
तो आप तो इस लड़ाई का इससे पहले कभी हिस्सा नहीं थी?
जी नहीं, पहले तो मैं एक टीचर थी और मैं अपने टीचर के, अपने बच्चे, अपने पति, अपना एक छोटा सा घर, उसमें बस व्यस्त रहती थी। वो एक जीवन है, ये मैंने महसूस करके अपनी ज़िंदगी की अपने जीवन जिए जा रही थी। पर कहीं ना कहीं जब मुझे नक्सल समर्थक होने का आरोप लगा के जेल में भेज दिया गया, प्रताड़ना दिया गया, उसके बाद ये जो विचारें जो उत्पन्न हुई, ये विचारें कोई किताबों से नहीं हुई है मुझे, ये सिर्फ प्रताड़नाओं के वजह से और जो जेल में कई प्रताड़ने बहनों से मैंने मिला उनके जरिए से ही मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुए। ये सब मुझे एक अनुभव से मिला है और वो अत्याचारों से मिला है।
सोनी सोरी से बात कर रही थी दिव्या आर्य। इस बातचीत का विस्तृत संस्करण आप सुन सकते हैं रविवार को दिन भर कार्यक्रम में।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर यमुना के बाढ़ क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 3 दिन के विश्व संस्कृति कार्यक्रम के लिए बनाए जा रहे ढांचे के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की जरूरत क्यों नहीं है। एनजीटी ने इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय से बुधवार तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस समय हमारे साथ विनीत खरे स्टूडियो में हैं। विनीत, ये मामला कहां तक पहुंचा है?
देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये मामला क्या है। आपने बाढ़ क्षेत्र का जिक्र किया, ये इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इलाका है, जो श्री श्री रविशंकर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने सारी मंजूरी ले ली है। जो पर्यावरणविद हैं, वादी हैं, वो उनका कहना है कि मंजूरी नहीं ली गई है ना। ये जैसा कि मैंने बोला कि बाढ़ क्षेत्र है, कि अगर यमुना में बाढ़ आती है तो कैचमेंट एरिया है, जैसे अक्षरधाम मंदिर बना था जब बन रहा था उसको लेकर भी इसी तरह के विवाद हुए थे। यहाँ पर ये करीब 35 साल हो रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए नरेंद्र मोदी 11, 12, 13 को 3 दिन का कार्यक्रम है जिसमें लाखों लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे, डांसर्स आएंगे, हज़ारों जनरेटर्स लाए जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी बड़ा काम चल रहा है, लकड़ियाँ स्टेज बन रहा है। तो चिंता ये है कि ये क्योंकि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इलाका है, क्या इतनी सारी सामग्री को लाना, इतने सारे लोगों को लाना, क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा? और ये जो हरा भरा इलाका है, ये जब कार्यक्रम ख़त्म होगा तो फिर उसका क्या रूप सामने आएगा, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? दिल्ली में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और अगर इस तरह की चीज़ वहाँ हो रही है तो उसका उसे फिर क्या कितना उसका इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ के जो यहाँ का जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, उसको लेकर चिंता है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम चलेगा या क्योंकि अब बिल्कुल ये लास्ट मिनट सिचुएशन है, लेकिन अब देखना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल
है। लगता नहीं कि नुकसान तो हो चुका है, अगर इस समय रोक लगती है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और जो कुछ पर्यावरण को नुकसान पहुंचना था वो तो पहुंच चुका है।
श्री श्री रविशंकर की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये पर्यावरणवादी आखिर कहाँ थे, ये 3-4 महीने पुराना कार्यक्रम है, अनाउंसमेंट हो चुका है और ये आखिरी मोमेंट पर 1 हफ्ते पहले इस तरह की जो बातें करना, ये कितने सही है? ये बातें अगर करनी थी तो बहुत पहले करनी चाहिए थी। और उनका आरोप है कि ये सारे जो लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके खिलाफ और ये मीडिया अटेंशन लेना चाह रहे हैं।
तो फैसला कल
उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका कहना है कि भाई अब तो ये बिल्कुल आखिरी मामला है और अगर हो भी जाए कार्यक्रम तो को बहुत भारी भूचाल नहीं आने वाला है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम होगा, लेकिन अब देखना होगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कितना स्ट्रिक्ट इस पर एक्शन लेता है। 11, 12, 13 3 तारीख को है, वहाँ पर राष्ट्रपति भी आने वाले थे, अब वो नहीं आ रहे हैं जिस तरह के विवाद हुआ है उसको देखते हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम होता दिख रहा है मुझे।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीत खरे आपका। केरल के कन्नूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता पर उस समय हमला हुआ जब वो कुछ स्कूली बच्चों को अपने ऑटो में स्कूल ले जा रहे थे। ऑटो चालक एवी बिजू की हालत गंभीर बताई जा रही है। कहा जाता है कि उन पर CPM के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रगति सक्सेना ने बात की स्थानीय पत्रकार प्रगित परमेश्वरन से।
आज सुबह 8:30 बजे 6 जन का एक ग्रुप आया था और एक ऑटो ड्राइवर को अटैक कर दिया था। और ये ऑटो ड्राइवर आरएसएस वर्कर माना जाता है, वहाँ का कन्नूर, वहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स बहुत होता है। तो ये जो इंसिडेंट है वहाँ बच्चों के सामने हुआ था, उनको चाकू और बड़े स्वर्ड्स से मारा गया था बच्चों के सामने। उसके बाद उनको कोड़ीकोड मेडिकल कॉलेज ले गया था और वहाँ डॉक्टर लोग ने बताया कि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। फिलहाल पुलिस केस रजिस्टर कर दिया है विद रिगार्ड टू अटेम्प्ट टू मर्डर। बीजेपी नेता सत्य प्रकाश जी ने कहा है कि सीपीएम वर्कर्स ने ये अटैक किया है, ये पॉलिटिकल दुश्मनी है। सीपीएम नेता जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एमवी जयराज, उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, इट शुड बी स्ट्रिक्टली पर्सनल, कोई सीपीएम वर्कर इन्वॉल्व नहीं है।
आपने अभी ऐसे कहा कि यहाँ पे बहुत राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं, तो क्या कोई और ऐसा केस हुआ है और ऐसा क्यों है कि वहाँ पे इस तरह का माहौल है?
एक पुराना इंसिडेंट जो है वो 1990 में एक टीचर को सीपीएम वर्कर ने मार दिया था उनके स्कूल में, उनके बच्चों के सामने। ही वॉज हैग टू डेथ। इनफैक्ट कन्नूर बेसिकली सीपीएम प्रोमिनेंट एरिया है और प्रेसेंटली वहाँ बीजेपी उनके वर्किंग बहुत बदल गया है, वो बहुत पॉपुलर होने लग गए हैं। और यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बोथ टीम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, द यूथ फ्रंट्स, द DYFI एंड RSS टीम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। उनको टिट फॉर टैट ये रहता है, अगर आज मुझे मारा है तो कल आपको जरूर मारूंगा।
तो क्या दोनों पार्टी के नेताओं ने कभी इन हत्याओं को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की?
दोनों ने इनिशिएटिव्स लिए थे, ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स है वो रोका जाए, शांत माहौल बनाए कन्नूर में। लेकिन ये जो मीटिंग जो होता है वो सिर्फ ऊपरी तल में होता है, नेता लोग बात करते हैं, मैसेज जो है वर्कर्स के लेवल में नहीं आते। वर्कर्स के मन में जो दुश्मनी है वो वैसे ही रहता है और जो नेता है वो बस दिखाते हैं कि या वी डिस्कस्ड समथिंग एंड देयर विल बी नो पॉलिटिकल किलिंग्स, बट इफेक्ट कुछ नहीं होता है।
प्रगति परमेश्वर से परमेश्वरन से बात कर रही थी प्रगति सक्सेना।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, बीबीसी हिंदी।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। यूरोपीय संघ और तुर्की का कहना है कि ब्रसेल्स में हुए इस सम्मेलन के दौरान वे प्रवासी संकट को सुलझाने के एक व्यापक योजना पर सहमत हो गए हैं, लेकिन दोनों ने इस सिलसिले में कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। 17 और 18 मार्च को होने वाली यूरोपीय संघ की बैठक तक इस योजना पर दोनों पक्षों में बातचीत जारी रहेगी। उधर तुर्की पूरी कोशिश कर रहा है कि इस दौरान उसे यूरोपीय संघ की सदस्यता मिल जाए। बीबीसी संवाददाताओं से मिले ब्यौरे का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप अब सबसे बुरी शरणार्थी समस्या से जूझ रहा है। ज्यादातर प्रवासी तुर्की से होते हुए यूरोप पहुंचते हैं। तुर्की पड़ोसी देश सीरिया के गृह युद्ध से भाग कर आए करीब 25 लाख लोगों को पहले ही आसरा दे रहा है। प्रवासी इतनी बड़ी तादाद में यूरोप में दाखिल हो रहे हैं कि यूरोप के छोटे बड़े देश पहले ही इस समस्या से निपटने के लिए त्राहिमाम की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि ब्रसेल्स में तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच हुई बैठक के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने दावा किया है कि ग्रीस में गैर कानूनी ढंग से आने वाले प्रवासियों की समस्या सुलझ जाएगी और इस तरह के प्रवासियों को वापस लौटा दिया जाएगा, लेकिन इसे लागू करना इतना सरल नहीं। हर सीरियाई को लौटाने के बदले तुर्की चाहता है कि एक कानूनी रूप से आए शरणार्थी को यूरोप स्वीकार कर ले। इसके अलावा तुर्की और अधिक वित्तीय मदद भी चाहता है। इससे भी अहम बात ये कि तुर्की यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहता है। यूरोपीय नेताओं ने एक बार फिर कहा है कि तुर्की को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जिनमें प्रेस की आजादी अहम है। सभी यूरोपीय नेताओं ने पिछले हफ्ते तुर्की के एक बड़े अखबार जमन पर सरकार के जबरन नियंत्रण पर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल:
हमने तुर्की के प्रधानमंत्री से बात की और कहा कि प्रेस की आजादी को हम सभी बहुत अहम मानते हैं। जहां तक शरणार्थियों का सवाल है तो तुर्की इनकी काफी मदद करता रहा है और अगर हम अपनी बाहरी सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो तुर्की की मदद बहुत जरूरी है।
अखबार को बंद करने पर तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने कहा कि वो मामला पूरी तरह कानूनी है और जमन पर पैसे की गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को आश्वासन दिया कि तुर्की में अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी तरह का खतरा नहीं है। अहमद दावतोग्लू:
यूरोपियन यूनियन इज अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म Everybody can criticize each other.
यूरोपीय संघ एक लोकतांत्रिक मंच है, हम एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, विचार साझा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी एक सामान्य मूल्य है और इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की में इस मूल्य की रक्षा की जाती है और मीडिया की आज़ादी को तुर्की में कोई खतरा नहीं है।
यूरोपीय संघ इस पूरी कोशिश में है कि किसी तरह शरणार्थियों के बढ़ते दबाव की समस्या को सुलझाया जाए और इसमें तुर्की के सहयोग की बेशक बहुत जरूरत है, लेकिन तुर्की यूरोपीय संघ की इस कमजोरी का फायदा भी उठाना चाहता है और हो सकता है कि जल्द ही वो यूरोपीय संघ में शामिल होने के अपने मकसद में कामयाब हो जाए।
यूरोपीय संघ और तुर्की में सहमति।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब आज की विशेष रिपोर्ट। खेल तो औरतें भी खेलती हैं और मर्द भी, लेकिन शादी और फिर बच्चे पैदा करने के फैसलों का असर दोनों पर एक बराबर नहीं होता। बहुत कम महिला खिलाड़ी शादी और खासतौर पर मां बनने के बाद खेल में लौट पाती हैं। मुक्केबाज मैरी कॉम उन कुछ औरतों में से एक हैं जो ऐसा कर पाईं, पर ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। क्रिकेटर बनने का ख्वाब देख रही एक आम लड़की की कहानी पर आधारित एक हिंदी धारावाहिक टीवी पर शुरू होने के बाद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने बात की असल जिंदगी में कुछ ऐसे ही फैसलों से जूझ रही नेहा तंवर से, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की टीम का हिस्सा बनकर खेला और फिर मां बनने के लिए सब छोड़ दिया। विशेष रिपोर्ट।
13 फरवरी 2014 को मेरा लास्ट मैच था फरोशा कोटला में अगेंस्ट हैदराबाद। वो मैच जब मैं खेल चुकी थी और मैं जब बाहर आई तो मुझे पता था कि मैं अब नेक्स्ट, अभी वो सीज़न का लास्ट मैच था, मुझे पता था कि मुझे अब नेक्स्ट मैं नहीं खेलूंगी क्रिकेट को, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था खेल सोच के।
नेहा तंवर ओपनिंग बैट्समैन और ऑफ स्पिनर भारतीय टीम की तरफ से ये वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं, पर साल 2014 में उन्होंने ये सब छोड़ दिया।
मुझे 3 साल हो गए थे शादी के लिए और मुझ पे थोड़ा बेबी प्लान करने के लिए थोड़ा प्रेशर था, इसलिए मैंने छोड़ा था। सोचा था कि मैं बेबी प्लान करूंगी तो मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करूंगी, और मैं ऑलरेडी 3 साल शादी के बाद मैं 3 साल खेल चुकी थी।
ऐसा नहीं था कि नेहा ने अपने करियर की बुलंदियों को छू लिया हो या मन में तय किए सारे लक्ष्य हासिल कर लिए हों, पर उन्हें लग रहा था कि वक्त हो गया था कि अब उनका मैदान उनका घर होगा, उनका बच्चा होगा।
लेकिन 12 साल पहले इस गांव के इतिहास में पहली बार एक लड़की ने क्रिकेट का बल्ला हाथ में लिया और फिर उसने ऐसा बल्ला घुमाया कि
सास बहु की कहानियों से कुछ अलग हाल ही में शुरू हुए एक हिंदी टेलीविजन धारावाहिक तमन्ना में भी ऐसी लड़की की कहानी है जो खेल और शादी के बीच के फैसलों से जूझ रही है।
अच्छा पति हो, घर हो, अच्छा घर हो, बच्चे हो, जो अच्छी परवरिश उनको मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन ड्रीम्स के सामने उसकी खुद की जो एक एक जो पहचान होती है और वो जो ड्रीम होता है वो सैक्रिफाइस हो जाता है।
अभिनय दियो तमन्ना के प्रोड्यूसर हैं। वो बताते हैं कि नए जमाने की महत्वाकांक्षी औरत की कहानी कहने में समाज में बनी आम समझ की वजह से कई तरह के दबाव होते हैं। एक संतुलन जरूरी है और वही संतुलन ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती।
अगर वो रियल लाइफ के प्रेशर्स हम नहीं लें जो स्टोरी कहने वाले हैं तो फिर क्या फायदा है? You know, because मेरे हिसाब से ये प्रेशर्स के हमने खुद बनाए हुए नहीं है, ये तो यू नो समाज के बनाए हुए हैं प्रेशर्स, तो उनको उनको हमने सर पे उठाना ही चाहिए, उसको एक्चुअली सामने लाना ही चाहिए, उसको लेना भी चाहिए उस प्रेशर को।
क्या ढूंढ रहे हो आप?
आज लड़के वाले आ रहे हैं तो धरा से कहना ये साड़ी पहने, साथ में ये चूड़ी कंगन भी पहने।
नेहा तंवर ने भी अपना संतुलन खोजा था और शादी के बाद 3 साल तक क्रिकेट खेलती रहीं। आखिरकार जब बच्चे के लिए खेल छोड़ा तो सोचा कि ये सोचा समझा फैसला सहजता से निभा लेंगी।
जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं क्रिकेट से बाहर अपने आप को सोच ही नहीं पाती थी, हर चीज़ में मुझे क्रिकेट ही दिखाई देता। मैं मैचेस देखती थी टाइम पास करने के लिए, कमेंट्री सुनती थी, अपने क्रिकेट के मेरे पास वीडियोज़ हैं मैचेस के लास्ट, मैं वो देखती थी। मैं कभी उससे अलग नहीं हो पाई क्रिकेट से। फिर धीरे धीरे जब डिलीवरी का टाइम पास आने लगा थोड़ा सा अपने आप में डिप्रेशन फील होता था कि मैं सारा साल खेलती थी, हर टाइम सिर्फ गेम गेम गेम, पूरा दिन ग्राउंड पे, लेकिन अभी मैं इतना टाइम मैं बेड पे थी और रेस्ट ले रही थी तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई कि मैं, मुझे लग रहा था कि मैं इजीली छोड़ पाऊंगी क्रिकेट लेकिन मैं छोड़ नहीं पाई।
9 महीने तक अपने आप से लड़ने के बाद आखिर नेहा ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार से कहा कि ये हो नहीं पा रहा, बिना क्रिकेट के जिंदगी अधूरी है। नेहा कहती हैं कि वो खुशनसीब थी कि परिवार वाले मान गए और उनके बेटे को संभालने की जिम्मेदारी भी ली, अब उनके सामने चुनौती थी फिटनेस की, प्रेगनेंसी के वक्त बढ़े 20 किलो वजन को कम करने की, और इसके सामने कई बार नेहा हिम्मत हारते हारते बची।
मैं टोटली डिसअपॉइंट हो चुकी थी उस चीज़ से, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन एक केजी भी वेट कम नहीं हो रहा है। फिर मैं 3-4 दिन मैं प्रैक्टिस पे रनिंग करने फिटनेस करने में गई नहीं, मैं घर पे ही थी 3-4 दिन 5 दिन। उसके बाद मुझे फिर से लगा कि नहीं यार, अगर मैं स्टेज पे आई हूँ, मैंने कुछ सोचा है आगे करने के लिए, तो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना मेरे हाथ में है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में है।
आखिर 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नेहा फॉर्म में आई और दिल्ली की टीम में उनका चयन भी हो गया। शहर से बाहर खेलने के लिए बेटे को छोड़ना आसान नहीं था, पर नेहा कहती हैं कि क्रिकेट का प्यार बहुत हिम्मत देता है। और अब नेहा की नजरें हैं आसमान की ओर, फिर से भारतीय टीम में जगह बनाने की ओर, लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेलने की ओर। और प्रेरणा के लिए
राहुल द्रविड़ के बारे में पसंद है कि वो जल्दी आउट नहीं होते हैं, खड़े रहते हैं पिच पे और टीम को जितवा के लेके जाते हैं।
तो आप अपनी जिंदगी में राहुल द्रविड़ हैं, क्यों आप भी तो नॉट आउट होना चाहती हैं ना, वापस आ गई आप गेम में।
आउट होना चाहती हूं।
विश्व महिला दिवस पर दिव्या आर्य की खास रिपोर्ट, और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है आदेश कुमार गुप्त के साथ।
सीधा विकेट पर दूसरी गेंद, दोनों गेंदों पर बहुत जोरदार अपील, वापस जाते हुए रोहित शर्मा, 2 गेंदों में कोई रन नहीं बनाया। अगर पाकिस्तान टीम आउट हो सकती है तो पाकिस्तान को ये सोचना हम भी आउट कर सकते हैं, अच्छा मैच।
ये लम्हे थे भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों बांग्लादेश में खेले गए एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के, और आज दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों बीसीसीआई और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब खुशी और राहत की सांस ली जब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होने वाले भारत पाक मैच को पाकिस्तान की ओर से हरी झंडी मिल गई। सुरक्षा इंतजामों का मुआयना करने भारत आई पाकिस्तानी जांच टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में मैच के लिए अपनी सहमति दे दी। उल्लेखनीय कि आज से आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में शुरू हो चुका है और 19 तारीख को धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा था कि राज्य सरकार इस मैच की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती। इसके बाद पीसीबी के अध्यक्ष शहरयार खान ने भी अपनी चिंता जताते हुए कहा था,
हमारी टीम आ रही है, उसकी सिक्योरिटी की आप बंदोबस्त करें, आप पूरी तरह से सिक्योरिटी दें, जैसे हमने 2004 और 2006 में यहाँ पर दी थी इंडियन टीम को। मुझे यकीन है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो तो यही चाहेगी कि हम वहाँ जाके खेलें मैचेस। बहुत इंटरेस्ट है हिंदुस्तान में भी, यहाँ पर भी, बांग्लादेश में बहुत इंटरेस्ट, अभी मैं कल ही आया हूँ बांग्लादेश से, बहुत इंटरेस्ट है। और ये जो मैच हुआ था वो तो फुल्ली बुक था, यानी स्टेडियम जो था पूरा भरा हुआ था।
तो आशंका के बादल छट गए भारत पाक मैच से, लेकिन बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्री चौधरी निसार अली खान जांच टीम की समीक्षा रिपोर्ट पर अंतिम फैसला करेंगे। उधर आज से भारत में आईसीसी विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप बी के पहले दौर के मुकाबले शुरू हो गए, जहां नागपुर में खेले गए पहले मैच में जिम्बाब्वे ने हांगकांग को 14 रन से मात दी। जिम्बाब्वे ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर बुसी सिबांडा के 59 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 158 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 6 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी। दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने हैं। वहीं आज से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जहां क्वालिफिकेशन मुकाबले खेले जा रहे हैं। पिछली बार फाइनल में हारने वाली भारत की साइना नेहवाल को दूसरी वरीयता दी गई है, जहां कल उनका सामना कनाडा की मिशेल ली से होगा। उनके अलावा कल ही पीवी सिंधु और पुरुष एकल वर्ग में के श्रीकांत, अजय जयराम और अचस्पर्ण अपना दावा पेश करेंगे।
और सभा की समाप्ति से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को लोकसभा में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ निकालने पर कर लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने ये प्रस्ताव बजट पेश करते वक्त रखा था। भारतीय वायुसेना इस साल जून में पहली बार महिला लड़ाकू पायलटों को लड़ाकू भूमिका में शामिल करेगा। वायुसेना प्रमुख अरूप साहा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को ये जानकारी दी। चीन ने कहा है कि वह वैश्विक मुद्दों पर एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है। देश के वार्षिक संसदीय सत्र के दौरान भाषण देते हुए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने यह बात कही। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। रेहान फतल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।